हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ने पहली बार उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, जहां तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि अनामिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। ये सुनकर अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज हम राणा मेंशन जाने वाले हैं। कल तो हम बालबीर दादाजी से मिलने जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त दादाजी को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो कहीं और चले गए और मेरा पूरा दिन बोरियत में निकल गया। लेकिन आज मैं वहां जरूर जाऊंगी, वैसे भी मुझे वहां एक जरूरी काम है। कहीं ना कहीं कबीर का ख्याल आते ही उसके मन में शरारत उभर आई थी। झलक ने उसे उसका ध्यान रखने को कहा और घर भेज दिया। घर जाकर वो तुरंत दादाजी के पास पहुंची और बोली, दादाजी आप कल भी मुझे मिलने के लिए नहीं लेकर गए, मुझे उनसे बहुत मिलना है, प्लीज आज तो चलिए ना, हम दोनों साथ में चलते हैं। दादाजी मुस्कुराए, ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, बलबीर के भी हालचाल ले लेंगे और रास्ते में कुछ फल फ्रूट भी खरीद लेंगे। उधर ऑफिस में ठीक 9 बजे झलक अपने काम में लगी हुई थी। अभी केवल कुछ ही स्टाफ आया था, बाकी लोग आने वाले थे। तभी दरवाजा खुला और अंदर आरव आए। अपने पापा को ऑफिस में देखकर झलक चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको घर पर आराम करना चाहिए था पापा, आप क्यों आए? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और भावुक स्वर में बोले, बेटा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज जो कुछ भी तुम कर रही हो, जितना भी स्ट्रगल तुम्हारी जिंदगी में है, वो सब मेरी वजह से है। कभी कभी सोचता हूँ, काश उस दिन उस धोखेबाज औरत को मैं अपनी जिंदगी में दोबारा आने ही ना देता, तो आज मेरी बेटी का दिल इतना भारी ना होता। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। झलक ने तुरंत माथे पर हाथ मारा, आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, प्लीज रोना बंद कीजिए, मुझे आंसुओं से नफरत है। और आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप उस औरत के करीब नहीं गए होते तो मैं पैदा कैसे होती? आरव उसकी बात सुनकर चुप रह गए। झलक की आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि पत्थर जैसी सख्ती थी। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आपको किसी बात के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अब आप बेफिक्र रहें, मुझे अच्छी तरह पता है कि कब कैसे और क्या करना है। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अभी वे अपनी खुशियों में खोए हुए हैं, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार जब मैं उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो वे मुझे आसानी से भूल नहीं पाएंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। उसके चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास था। अभी आप किसी के सामने नहीं जाएंगे, जब तक मैं ना कहूँ आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आपको आपका नाम, इज्जत और सब कुछ वापस दिलाऊंगी। जिस तरह उन्होंने आपको जेल में ही मरा हुआ साबित कर दिया था, मैं उन्हें जीते जी ऐसी हालत में पहुंचाऊंगी कि वे जिंदा लाश बन जाएंगे। गुस्से और दर्द के बीच झलक की आंखें चमक रही थीं। आरव ने उसे गले से लगा लिया। सब कुछ तुमने ही तो दिया है मुझे बेटा, तुम मेरी जिंदगी में आई तभी मुझे जीने की वजह मिली, वरना जेल की उन अंधेरी कोठरियों में तो मुझे लगने लगा था कि यही मेरी जिंदगी का अंत है। उनकी आवाज फिर भर्रा गई। झलक ने मन ही मन कसम खा ली, जिन लोगों ने उसके पिता को खून के आंसू रुलाए हैं वो उनकी दुनिया हिलाकर रख देगी। उसने समझाकर आरव को घर भेज दिया और कहा कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी, अभी उसे अपनी बाकी तैयारी पूरी करनी है। दूसरी ओर राणा मेंशन में सुबह के नाश्ते के वक्त अनामिका अपने दादाजी के साथ फल फ्रूट की टोकरी लेकर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुलते ही बलवीर ने सामने दिग्विजय को देखा और खुश होकर उनका स्वागत किया। अरे तू बता तो देता कि आने वाला है, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनवा लेता। दिग्विजय हंस पड़े। अरे नहीं नहीं, ये सब अनामिका की जिद है, ये तुमसे मिलना चाहती थी। अनामिका ने मासूम बनते हुए नमस्ते की, लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। उसे तो किसी और से भी मिलना था और शायद आज वो मुलाकात होने ही वाली थी। मैं इसीलिए आ गया, वरना मैं तो कह ही रहा था कि तुझे ही बुला लूंगा, दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर बलबीर आंखें दिखाते हुए बोले, देखा हमारी बच्ची को, हमारी ही तरफ आई है, वरना तू तो ठहरा ना लायक। इतना कहते ही दोनों हमउम्र दोस्त एक दूसरे की टांग खींचने लगे। वहीं अनामिका उनकी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और वही आवाज ऊपर कमरों में सोए हुए आदित्य, राणा, कबीर और अभय के कानों तक पहुंच गई। सुबह सुबह मेंशन में किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनकर तीनों अचानक उठकर बैठ गए। तीनों की हालत देखने लायक थी, बाल बिखरे हुए, टी शर्ट सिकुड़ी हुई, आंखों में नींद और हैंगओवर साफ झलक रहा था। अभय ने आंखें मलते हुए कहा, ये क्या हो गया हमारे घर में, किसी लड़की की आवाज? मुझे तो पता है आंटी जी तो घर पर है नहीं, वो तो ट्रिप पर गई हुई हैं, और दादाजी की तबीयत के बारे में भी किसी को नहीं बताया गया, तो वो भी किसी को बुलाएंगे नहीं, तो फिर ये सुबह सुबह राणा मेंशन में लड़की के हंसने की आवाज कहां से आ रही है? कबीर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इंडियन हॉरर मूवी शुरू तो नहीं हो गई? आदित्य तुरंत बोला, नीचे जाकर ही पता चलेगा, चलो फटाफट चेक करके आते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तीनों ने एक बार भी शीशे में अपनी शक्ल देखना जरूरी नहीं समझा और जिस हालत में सोए थे उसी हालत में सीधे नीचे हॉल में पहुंच गए। जैसे ही वे हॉल में आए सामने का नजारा देखकर ठिठक गए। अनामिका सोफे पर बैठी थी और दादाजी के साथ हंस रही थी। अनामिका ने तीनों को उस हालत में देखा तो आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। फिर उसने तीनों को ध्यान से स्कैन किया और आखिर में उसकी नजर कबीर पर आकर ठहर गई। वो तुरंत उठकर उसके पास आई। गुड मॉर्निंग कबीर जी। आदित्य सर, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया आप लोगों को? ये कैसी हालत है? अब हैरानी से उसे देखते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आप हैं कौन? वैसे बहुत खूबसूरत हैं। उसके इस अंदाज पर कबीर ने उसे घूरा और हल्की सी कोहनी मार दी। तभी आदित्य तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग, ये मेरा भाई है अभय, काफी दिनों बाद हमसे मिलने आया है। रात को बातें करते करते देर हो गई इसलिए ऐसी हालत हो गई है। हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। ये कहकर आदित्य जल्दी से वहां से निकल गया। अभय जाते जाते फिर मुस्कुराया, बाय ब्यूटीफुल, बाद में मिलते हैं। आखिर में कबीर ही वहां रह गया। अनामिका हल्का सा हंसते हुए उसके थोड़ा पास आई और उसके कान के करीब झुककर फुसफुसाई, क्या बात है कबीर जी, अब मुझे समझ में आया आपके ब्रह्मचारी बनने का मतलब। आपको लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, इसीलिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। ये सुनकर कबीर की आंखें फैल गईं। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी दादाजी की आवाज गूंजी, अरे उससे क्या टाइम बर्बाद कर रही हो, फटाफट आकर कुछ खा लो। बलवीर जी हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। दादाजी बड़े प्यार से अनामिका को सर्व करने लगे। अनामिका बोली, मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद आई, बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह बिंदास हैं आप, आई रियली लाइक यू। ये सुनकर बलवीर जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। पास ही बैठे दिग्विजय जी मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं झलक कैसे उन लोगों का सामना करेगी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। बस एक बार झलक का ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, उसके बाद सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में नंबर वन बिजनेस अगर किसी का होगा तो वो हमारी झलक मल्होत्रा होगी। क्या हुआ? बलवीर जी ने मजाक में कहा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल रहा है क्या दादा पोती की बातें सुनकर? देख, ये तेरी पोती कम मेरी ज्यादा है, जब इसका दिल करेगा ये मुझसे मिलने आएगी और तू इसे रोकेगा नहीं।
दिग्विजय जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे भाई मैं थोड़ी तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ, जो ठीक लगे करो। अनामिका उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर आदित्य, कबीर और अभय तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे बलवीर जी ने उन्हें बारी बारी से घूरते हुए कहा, उतर गया तुम तीनों का नशा। अचानक ये सुनकर अनामिका जो जूस पी रही थी इतनी जोर से हंसी कि जूस उसके गले में अटक गया। आदित्य ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा और तीनों भाइयों के चेहरे एक साथ उतर गए। सुबह का नाश्ता अब और भी दिलचस्प होने वाला था।